نمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک نکاتی منشور جو میں نے ایک زمانے میں عرض کیا کہ رب تعالیٰ کو حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے, اس کی دوستی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا, کہ انسان ٹوٹل سرنڈر میں چلا جائے. اور ٹوٹل سرنڈر دو ہی صورتوں میں پیدا ہوگا, ایک تو اللہ کے احکامات کی جب بات آ جائے تو ہم اپنا مائنڈ اپلائی نہ کریں وہاں, کب کیوں کیسے کس طرح, یہ چیز نہ رہے. دوسری اسی سلسلے کی کڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جب موقع آ جائے تو پھر نہ انسان کی اپنی ذات ہے, نہ نفس کی خواہشات, نہ ماں باپ, نہ اولاد, نہ کوئی اور بہن بھائی رشتہ دار, پھر سب کو قربان کر دیتا ہے. تمام رشتے قربان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر. ان سارے رشتوں میں سب سے زیادہ خطرناک رشتہ اولاد کا ہے, کہ اولاد بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے انسان کے لیے. جب ہم ٹوٹل سرنڈر کی بات کرتے ہیں تو اس ضمن میں ایک عرض آپ سے میں کر دوں کہ سرنڈر کسی اوور نائٹ چینج کا نام نہیں ہے, نہ یہ ابرپٹلی آتی ہے. یہ پروسیس پروگریسیو ہے اور رفتہ رفتہ آدمی سرنڈر کرتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ پوری طرح اللہ تعالی کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے. آج ابھی ادھر آتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ یہ جن دنوں یہ بات ہم یہاں اس نشست میں کرتے تھے کہ انسان ٹوٹل سرنڈر میں چلا جائے, تو یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی کہ میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ چینج یکلخ نہیں آئے گی کسی بھی شخص میں, بلکہ ایک لانگ ڈرون پروگرام ہے یہ سرنڈر کا, جس پر بہت رفتہ رفتہ عمل ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ گھبرانے لگتے ہیں کہ میں ٹوٹل سبمیشن میں جا نہیں رہا اللہ کے سامنے. تو وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, اگر انسان پورے یقین اور کنسسٹنسی کے ساتھ اس پر اگر عمل کرتا رہے تو رفتہ رفتہ وہ ٹوٹل سبمیشن میں چلا جاتا ہے. یہی بات میں نے مرشد کے سلسلے میں عرض کی تھی کہ مرشد کے ساتھ بھی انسان کو اپنی مرضی اور اپنے دماغ کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دینا پڑتا ہے اور آنکھیں بند کر کے مرشد کے احکامات پہ عمل کرنا پڑتا ہے. جس شخص نے بھی اپنا مائنڈ اپلائی کیا مرشد کی بات کو اوبے کرنے کے سلسلے میں, ہمیشہ خطا کھا گیا. اسی ضمن میں میں نے ایک عرض کی تھی کہ آپ کی نظر میں جو ایسا شخص ہو جو کہ اللہ کے قریب چلا گیا ہو اور رب تعالیٰ نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہو, دو باتیں, اللہ کو ہم اپنا دوست بنا لیں اور اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے. تو پہلی بات تو آسان ہے کہ ہم اللہ کو اپنا دوست بنا لیں, لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ بھی ہمیں اپنا دوست سمجھنے لگے؟ یہ بہت ایک باریک سا اس میں فرق ہے. گرچہ بہت سے لوگ ایک دلیل یہ لے آئیں گے کہ رب تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھو میں تمہاری طرف دو قدم بڑھوں گا. وہ اصل میں دو قدم جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تو اس نے بھی اپنا دوست بنا لیا ہے. وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کہی گئی ہے, उसका मतलब यह है कि आप जरा सी कोशिश करें, मैं और आप हम जरा सी भी कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर चलें, तो परवरदिगार हमें तौफीक बख्श देगा, ऐसे हालात पैदा कर देगा कि हम उसकी राह पर आसानी से चल लें। वो कॉन्टेक्स्ट है। हम अल्लाह को दोस्त समझने लगे तो उसके नतीजे में होगा क्या कि जो ही हमने सिदक दिल से अल्लाह को अपना दोस्त जाना तो हमें ये यकीन आ जाएगा कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर करता है। तो हम आजाद हो जाएंगे इन चीजों से कि या अल्लाह मैंने तो ये कहा था कि मेरी ट्रांसफर शेखपुरा हो जाएगी, क्या हुआ मैं औकाड़ा ट्रांसफर कर दिया गया। तो दौड़ो अब किसी दुआ वाले के पास, उससे दुआ कराओ कि मेरी ट्रांसफर औकाड़ा से वापस शेखपुरा हो जाए। ये दोस्त अल्लाह को समझने के नतीजे में जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, अल्लाह ताला की जात में जो ट्रस्ट आएगा, भरोसा पैदा होगा, उसके नतीजे में हम इन चीजों से बहुत दूर हो जाएंगे कि दोस्त कभी हमारे मफाद के खिलाफ कोई काम कर नहीं सकता, ये यकीन आने लगेगा। तो अल्लाह की तरफ से आने वाली तमाम चीजों को हम बड़े खुश दिली से तस्लीम करना शुरू कर देंगे। वही एक बुनियादी नुक्ता है जहां हम फंसे रह जाते हैं कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने जो हम पे कोशिश करना फर्ज किया है, ये मैं भी बड़ी शिद्दत से यहां कहता रहता हूं, तो उसका मतलब यह है कि लोटा घुमाने वालों के पास हम दौड़ते जाएं, बड़ी तगोदो करके शाह साहब ढूंढने के साहब जेहलम के दूर उफ्तादा गांव में एक लोटा फेरने वाला रहता है, मैं वहां जाके दुआ करा लूं कि अल्लाह ताला मेरी ट्रांसफर शेखुबरा कर दे। वो नहीं है बात, वो तो ईमान की कमजोरी को जाहिर कर रहा है। जब अल्लाह ताला पर मेरा भरोसा कम हो जाएगा तो मैं फिर लोटा घुमाने वालों के पीछे भागने लगूंगा, पीर साहिबान की तलाश शुरू हो जाएगी मुझे, ऐसे लोगों की दुआ शुरू हो जाएगी जो मुस्तजाबुद्दावात हैं, मैं उनसे दुआ करा लूं। लेकिन जब तक मेरा भरोसा अपने रब पर बहुत मजबूत है तो अगर कोई दुआ करने वाला चलकर भी मेरे पास आ जाए और ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूं कि तुम्हारी ट्रांसफर शेखपुरा हो जाए, तो सीधा एक जवाब मेरा उसको होगा, क्यों, क्या मेरा रब नहीं है? बहुत पुरानी बात है, मैं एक दफ्तर के काम के सिलसिले में मुझे इंडिया विजिट करना पड़ा, वहां की गवर्नमेंट ने मेरे ही ओहदे का एक अफसर मेरे साथ अटैच कर दिया कि वो मुझे कंडक्ट कर ले। तो जब हम अपने काम से फारिग हो गए तो मैंने यहां रिंग किया कि मेरा काम तो खत्म हो गया, मुझे दो दिन की छुट्टी चाहिए होगी क्योंकि मैं बॉम्बे अपने जाती काम से जाना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ने छुट्टी दे दी, तो मसला नहीं था कोई। तो जब इंडियन गवर्नमेंट से मैंने बात की कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो उन्होंने एक साहब को नॉमिनेट कर दिया कि वो मुझे कंडक्ट कर ले। इत्तफाक ये हुआ कि एक हाई पावर्ड अमेरिकन डेलीगेशन वहां आ गया, तो जिस दिन मैं बॉम्बे पहुंचा उन साहब को पुणे जाना पड़ गया उस डेलीगेशन के साथ, तो उन्होंने अपनी बेगम को डिटेल कर दिया कि मुझे कंडक्ट कर ले। वो डॉक्टर थी, तो हम वहां एक बुजुर्ग हैं जिनके लिए मैं जाना चाहता था, उनका मजार समुंदर में है, हाजी अली साहब, उनकी खिदमत में हाजिर हो गए। दोपहर को मेरी इबादत का टाइम हुआ तो मैंने, अब ये तो मैं कह नहीं सकता था किसी से कि मेरी इबादत का टाइम है, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक जरूरी काम है होटल में, आप मुझे होटल में ड्रॉप कर दें और 3 बजे पिक कर लें। लेडी डॉक्टर नीता उनका नाम था, 3 बजे आ गई, तो मैं हैरान ये हुआ कि उन्होंने मेरे गाड़ी में बैठते ही कहा कि शाह साहब हम तो पंडितों के पास जाते नहीं कहीं, हमें जब जरूरत पड़ती गाइडेंस की तो मेरे एक अंकल हैं जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और इंडियन आर्मी से बहसियत कर्नल रिटायर हुए हैं, तो हम उनके पास चले जाते हैं। मैं जरा परेशान हुआ कि ये क्यों कह रही है मुझे, तो पेशते रिश्ते के मैं उनसे कहता कि बेबी व्हाट मेड यू टॉक लाइक दैट, आई नेवर मेड मैन रिक्वेस्ट टू टेक मी टू सम पंडित। तो मेरे असिस्टेंट जो मेरे साथ गए थे वो पिछली सीट से बोले कि सर वो मैंने इनसे कहा था कि शाह साहब को पंडितों से मिलने का बहुत शौक है। अब जाहिर है मैं अपने असिस्टेंट को लोगों के सामने तो कुछ कह नहीं सकता था, तो दिल में सोचा कि ओके आई विल सॉर्ट यू आउट, लेट मी गेट टू होटल इन द इवनिंग। तो वो चले गए, वहां कर्नल साहब से मुलाकात हुई। तो अगर मैं ना मिलता तो अफसोस होता, बहुत प्यारा शख्स था वो। लेट मी गेट टू होटल इन द इवनिंग। तो वो चले गए, कम से वो यतीम खाने चला रहा था दो, तो पता ये लगा कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और लोगों के जायचे बनाती हैं। कम से वो यतीम खाने चला रहा था दो, तो पता ये लगा कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और लोगों के जायचे बनाती हैं। कम से वो यतीम खाने चला रहा था दो, तो पता ये लगा कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और लोगों के जायचे बनाती हैं। कम से वो यतीम खाने चला रहा था दो, तो पता ये लगा कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और लोगों के जायचे बनाती हैं। कम से वो यतीम खाने चला रहा था दो, तो पता ये लगा कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और लोगों के जायचे बनाती हैं। वो जायचा वगैरह बना के पहली बात ही बताने पे वो अटक गए। तो उन्होंने डॉक्टर नीता से मुखातिब होकर कहा कि नीता, ये तुम्हारे जितने दोस्त अब तक आए हैं, ये आदमी उन सब, बाकी वो मैं बातें नहीं कहता, जो उन्होंने कहा उसको छोड़ दीजिए। तो आखिर पर उन्होंने एक जुमला कहा जिसने मुझे सर से पांव तक शेक किया एक बार। कहने नीता, ये पहला आदमी देखा है जो भगवान को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। ये बात मेरी जुबान पे भी कभी नहीं आई, वो दिल ही में थी कि रब मेरा है। वो हुआ ये कि जब मैं पहला उमरा जिंदगी में करने गया तो ये सुना था कि खाने काबा पर जब पहली नजर पड़े तो जो कुछ मांगो रब अता करता है। मैं गया उधर, तो जब खाने काबा पर पहली नजर पड़ी मेरी, तो मैंने वो जैसा ऊट पटांग तरीका है मेरा और वो गुस्ताख आदमी जैसा हो सकता है, तो रब ताला से कहा कि या बारी ताला, ये तेरी सारी दुआएं न मुझे मांगना आती हैं न मैं मांगूंगा, लेकिन तू दिलों के हाल जानता है, तुझे मालूम है कि मैं तुझे अपने आप को तेरा बड़ा आजिज बंदा समझता हूं और तुझे सिद्क दिल से अपना रब मानता हूं। तो ये सुन के आया हूं कि तुझसे जब तेरे घर पर पहली नजर पड़े जो मांगो तू अता कर देता है। आज अगर तेरे अंदर हौसला है मुझे कुछ देने का तो छोड़ इस सारी दुनिया को, तू सिर्फ मेरा हो जा। ये बात उस हिंदू कर्नल ने रिपीट कर दी अपने अल्फाज में। तो ये बात कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं कोई अपने बारे में आपको बताऊं, ये तो गुस्ताखी से भरी गुफ्तगू है जो अल्लाह के हुजूर की। कोई अकलमंद होता तो बड़ी आजिजी से रब की तमाम बताई हुई दुआएं पढ़ता, हाथ पांव जोड़ के उससे माफी मांगता गुनाहों की। तो वो चूंकि मेरा एक गुस्ताख रवैया था, तो लेकिन मैं हैरान ये हुआ कि उस कर्नल ने वो बात कर दी। तो ये बात सुनाने का मकसद ये था कि जब इंसान रब को दोस्त मान ले तो भरोसे की उस डिग्री पर चला जाए कि रब सिर्फ मेरा है, तो जब यूं समझेगा रब को कि रब सिर्फ मेरा है तो फिर उसको लोगों से दुआएं कराने की जरूरत नहीं रहती है कि मेरा दोस्त बैठा है, मैं अभी उससे बात करता हूं कि या परवरदिगार मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब है। जब तूने दावा किया कि तू रब है तो अब अपने शाया निशान मुझे पाल, मैं इस मुश्किल में हूं, निकाल ले इससे। और वह निकाल लेता है, कभी छोड़ता नहीं मुश्किल में इंसान को, मास्वा इसके कि कोई ऐसी चीज की ख्वाहिश इंसान करने लगे जो उसके लिए जरर रसा हो जाए। वो फिर अपने दोस्त को वो नुकसानदेह चीज कभी अता नहीं करता। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे से बेपना प्यार करती है, उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है, लेकिन अपने उस बच्चे को जिसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी कर रही है, आग को नहीं पकड़ने देगी, गर्म बर्तन को हाथ नहीं लगाने देगी, इसलिए कि मां जानती है कि नुकसानदेह है और बच्चा नहीं जानता, तो नुकसान नहीं पहुंचने देगी मां अपने बच्चे को। इसी तरह रब अपने बंदे को वो चीज अता नहीं करता जो उसके लिए जरूर रसा है। इसलिए हजरत अली करम वजह ने वो फरमाया था कि जब कोई चीज मुझे अता कर देता है रब, तो मैं अपने रब के हजूर शुक्र अदा करता हूं, और जब कोई चीज अता नहीं करता तो भी मैं शुक्र करता हूं कि या अल्लाह तो बड़ा रहीम व करीम है कि तूने मेरी वो दुआ कबूल नहीं फरमाई जो मेरे लिए जरर रसा थी और मुझे उस नुकसान से बचा लिया तूने। तो इंसान फिर उस जगह चला जाता है। जो ही इंसान ने यह समझा कि यह रब सिर्फ मेरा है, एक उसके साथ इतनी स्ट्रांग सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हो गई कि उसने ये समझा कि रब सिर्फ मेरा है, तो ये मकाम आएगा जहां इंसान को रब अपना दोस्त बना लेगा, और जब वो दोस्त बना लेगा तो फिर उस पर वो साये की तरह, उस पर एक अम्ब्रेला का साया कर देता है, छा जाता है इंसान पर, उसे अपने प्रोटेक्शन में ले लेता है, अपनी पनाह में ले लेता है। बल्कि मैं तो ये अर्ज करूंगा कि जब नमाज के बाद दुआ हम मांगते हैं, तो अगर अपनी दुआ में एक जुमला ये शामिल कर लें कि या अल्लाह तू मुझे इन तमाम मुसीबतों और आफतों से अपनी पनाह में ले ले, रब ताला से उसकी पनाह मांग लीजिए कि या अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह में ले ले, और जो बंदा रब की पनाह में आ गया, फिर दुनिया की कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई आफत उस पर आ नहीं सकती, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मैं तो ये अर्ज करूंगा कि अपनी दुआ में ये जुमला जरूर शामिल कर लीजिए कि या अल्लाह तो मुझे अपनी पनाह में ले ले इन आफतों और मुसीबतों के अगेंस्ट। एक जमाने में यहां बात हो रही थी कि जो लोग अल्लाह की राह पर चले और फिर उन्हें अल्लाह का कुर्ब मिल गया, तो अगर हम उनके पांव के निशान पर पांव रखते हुए चलें तो अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे, उसी जगह पहुंचेंगे जहां वो शख्स पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर ली, आपके नक्शे कदम पर चले, तो इस्लाम का अमली नमूना इंसान बन जाएगा। ये जो मुर्शिद के नक्शे पा पर चलने के लिए मैंने अर्ज किया था, एक चीज याद रखिए कि अगर अंधाधुंध उस पर हम चले तो बजाय फायदे के बाज का नुकसान हो जाता है, क्योंकि जितने भी फकीर हैं उन सब की मजाज, उनकी फितरत, उनकी पढ़ाइयां, उनकी करामात एक दूसरे से जुदा होती हैं, वो यकसा नहीं होती। तो अगर हमने नकल की और सर्कमस्टेंसेस इन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हुआ तो बजाय फायदे के नुकसान हो जाता, क्योंकि हर एक उन्हीं सर्कमस्टेंसेस और कॉन्टेक्स्ट में कदम उठाता है जिससे उसका वास्ता है। तो अंधाधुंध नकल का नुकसान होगा, तो कहीं ये ना हो कि ब्लाइंडली जब आप फॉलो करने लगे तो पता ये लगे कि उसके तो सर्कमस्टेंसेस और कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट था बिल्कुल, जो आपका नहीं है, तो मुश्किल में फंस गए। तो हर छोटी बड़ी बात में उस तरह फॉलो करने की बजाय वो चीजें जो फायदेमंद हैं इंसान के लिए, जो मंजिल पर पहुंचाती हैं, जैसे एमाल हैं, अगर एमाल इंसान के नेक नहीं है तो इबादात सिर्फ सवाब का बाइस तो बन जाएंगी, फर्ज अदा हो जाएगा, جو ہم پر فرض ہے اس سے سرخری ہو گئی، ہمیں قیامت کے روز اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا. لیکن رب کی دوستی عبادات کے ساتھ ساتھ جب تک کہ نیک اعمال نہیں ہوں گے دوستی نہیں ملے گی. تو زور ان چیزوں پہ رکھیے کہ آپ کے مرشد کے اعمال کیا تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اعمال کا تعلق زیادہ تر حقوق العباد سے ہے، کیونکہ عام آدمی تو صرف ان چیزوں کو پورا کر لے گا جو فرض ہے، لیکن فقیر اس فرض سے آگے جاتا ہے، جس کو محاورت کہا جاتا ہے ٹو گو بیونڈ کال آف ڈیوٹی. یہ اگزامپل میں نے یہاں دو تین مرتبہ دی کہ جو قرآن پاک میں ایک بات رب تعالیٰ نے کہی کہ تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن صرف اسی قدر جس قدر زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے. فقیر اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ اسی آیت کے اگلے حصے پہ عمل کرتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فقیر کی نظر اس پر رہتی ہے. تو اسی طرح فقیر 2.5% زکات پر نہیں رہتا، وہ اس سے آگے جاتا ہے. اس کے جو رویے ہیں، اس کے جو اعمال ہیں مرشد کے، وہ در حقیقت معنی رکھتے ہیں کہ ان پر عمل کر لیا جائے. انسان کو ہمیشہ ایک بات کی خواہش یہ کرنی چاہیے کہ رب تعالی ہمیں اپنی ذات پر وہ بھروسہ ادا کر دے جو اس کے مرشد کو تھا، جو میرے مرشد کو ملا. کیونکہ آپ کے مرشد پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور اللہ کے دوستوں میں سے ہیں، اسی لیے ولی اللہ کہلاتے ہیں. تو جب وہ اللہ کے دوست ہیں تو ان کا بھروسہ رب کی ذات میں غیر متزلزل ہے. دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی اس بھروسے کو ہلا نہیں سکتی. ایک لمحے کو اس کو خیال نہیں آئے گا کہ میں غیر اللہ کے پاس چلا جاؤں. وہ بھروسہ حاصل کر لیجئے کسی طرح، اور وہ ایک ہی صورت میں آئے گا، وہ ہے ٹوٹل سبمیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احسانات کو ہر لمحہ یاد کرنا. اس سے پیار پیدا ہوگا اللہ تعالی کے ساتھ. جس کسی کے بھی احسانات کو ہم یاد رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں پیار ضرور ہوتا ہے. یہ ایک فطری فعل ہے کہ جو آدمی ہم پر احسان کرتا ہے، اگر ہم نے احسان شناسی کی ہے، یاد ہے اس کا احسان، تو ہمیں اس آدمی سے پیار محسوس ضرور ہوگا. تو اگر ہر لمحے ہم اللہ کے احسانات کو یاد کرتے رہیں گے تو اتنے احسانات ہیں کہ آہستہ آہستہ رب کا تصور ہمارے ذہن میں، ایسے رحیم و کریم اور غفور الرحیم کا تصور آئے گا جس کے پاس ہمارے لیے مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں، احسانات ہی احسانات ہیں. تو وہ پیار کا سبب بن جائے. سورہ رحمان کے لاسٹ ٹائم ایک سوال تھا جس میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی مرتبہ کر دوں گا، آج پھر وہ ہم دوسرے معاملات میں چلے گئے. سورہ رحمان کے فضائل تو بعد میں عرض کر دوں گا، لیکن اس کے اندر ایک آیت بار بار رپیٹ ہوتی ہے، فبالعلى ربکما تکذبان. اس آیت کو کائنات کی کنجی کہا جاتا ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ اتنی خوبصورت اور اتنی اثر آفرین چیز ہے، اس کے انعامات اس قدر وسیع ہیں، لیکن کہیں کبھی کسی کتاب میں پڑھنے کو یہ چیز نہیں ملے گی. उसकी शायद एक वजह यह हो सकती है कि रब ताला इनामात में जो पढ़ाई अता करता है अपने दोस्तों को, ये शायद कम लोगों को अता हुई है। किताब में इसका बयान नहीं आया कहीं, किसी किताब में, किसी वली अल्लाह की लिखी हुई किताब। ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिसमें मुख्तलिफ आयात, मुख्तलिफ अस्माए हुस्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक, इनके फजाइल बयान किए हुए हैं, बहुत से औलिया किराम ने लिखा, गर्चे वो आम नहीं हुई। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कम से कम अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं कहीं आई, मैंने देखा नहीं कि ये लिखा हुआ मिल जाए। जो शख्स इसको पाबंदी से पढ़ता है और एहतियात ये कर लेता है इसकी कि सूरज की रोशनी नमूदार होने से पहले पहले इसे पढ़ लिया जाए, सूरज की रोशनी कतई तौर पर नमूदार ना हुई हो, अंधेरे में पढ़ा जाए, तो इसके इनामात बेपनाह हैं। मिसाल के तौर पे इसका जो पहला असर आता है, अगर ये मैं बता दूं कि इसके असरात बहुत देर में आते हैं, क्योंकि बहुत देर पा हैं इसलिए देर में आएंगे। पहला असर तो इसका यही आता है कि लोग जो आपको नहीं जानते वो भी आपको सलाम करने लगेंगे, दुनिया में कहीं चले जाइए लोग आपको सलाम करेंगे। उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला इंसान को अपनी मखलूक में बाइज्जत कर देता है। इसके अगले असरात ये आते हैं कि अगर इंसान को भूख लगी है तो वो किसी और से जिक्र नहीं करता कि मुझे बहुत सख्त भूख है, 5-10 मिनट के अंदर अंदर कोई एक आदमी आएगा और आपको बेहतरीन खाना दे जाएगा। कोई ऑफ सीजन फ्रूट खाने को दिल चाहा तो इंसान बैठा किसी से जिक्र नहीं करता, बस अपनी उस ख्वाहिश को दबा रहा है, तो 5-10 मिनट ही में कोई आदमी आएगा और आपके सामने वही फ्रूट रख देगा कि ये लीजिए खा लीजिए। अगर इंसान फिर भी पढ़ता रहे तो अगली मंजिलों को चलता है और सूरत हाल ये हो जाती है कि जहां इंसान की कोई जरूरत आई उसके 15-20 मिनट में उस जरूरत के मुताबिक पैसे आ गए, कोई ना कोई दे जाएगा। और अगर इंसान फिर भी अल्लाह को पुकारता रहा इसी आयत के जरिए तो अगली मंजिल यह आएगी कि जरूरत पैदा होने से 15 मिनट पहले उसकी जरूरत के मुताबिक पैसे टेबल पर पड़े होंगे। और फिर भी अगर अल्लाह को याद करता रहा अल्लाह बंदा तो अगला मकाम वो आता है कि एक आदमी रिवॉल्वर लेके कत्ल करने की नियत से आया है, जो ही उसकी नजर आपके चेहरे पे पड़ेगी तो सलाम करके वापस चला जाएगा। फिर इसके अलावा और बेतहाशा फजलो करम है अल्लाह के जो इस आयत की बरकत से आने लगते हैं। लेकिन यहां एक नुक्ता जरूर अर्ज कर दूं कि इस नियत से इसे पढ़ा ना जाए, नियत ये ना हो, नियत ये हो कि मैं अपने रब का जिक्र करूं। क्योंकि जब आप यह आयत पढ़ेंगे तो आप अपने आप को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो अल्लाह के एहसान के सुलूक को याद करने का एक जरिया है, ये इस बात का इकरार है कि हम तेरे एहसान मंद हैं कि तू हमारे इस्तेहकाक के बगैर हमें सब चीज अता फरमाता है। तो जब इंसान बार बार ये इकरार करेगा तो अल्लाह ताला की नेमतें और बढ़ जाती हैं। ये वादा है कि शुक्र अदा करने वालों की नेमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो ये एक तरह से शुक्र अदा कर रहा है अल्लाह के हजूर, एहसान मंदी का, एहसान शनासी का इजहार कर रहा है। तो इसी नियत से पढ़िए कि मुझे अल्लाह के एहसान को एक्नॉलेज करना है अल्लाह के हजूर। तो असरात ये خود بخود آ جائیں گے، یہ بائی پروڈکٹ ہے جو مل کے رہے گی ہر ایک کو، لیکن ثواب بہت ہو جائے گا، آپ کے نام اعمال میں ایسا نور بھر دیا جائے گا جو آپ کے چہرے سے بھی جھلکنے لگے گا اگر نیت یہ رہی، اور نیت کہیں خدا نہ خواستہ دنیاوی کر لی تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس کے اندر یہ ایک باریک سا نقطہ ہے۔ سورہ رحمان کو اگر 125,000 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کے تمام اثرات انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ زکات کا انہوں نے پوچھا تھا، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس کے فضائل انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کر دوں گا۔ یہ ایک نشست میں انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو آئندہ اتوار اگر زندہ رہا بشرطِ زندگی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور اس کے فضائل بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔